महाबंधक पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं सिद्धादग्धमला विशुद्ध बुद्धि अलत सवर्था तिरुवण शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सवे। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। उसमें पुस्तक पहली में हम प्रथम प्रकृति बंधाधिकार देखते हुए पृष्ठ संख्या 28 पर आ गए। 28 अवधि ज्ञानावरण का अपना विषय चल रहा है और उसमें अवधि ज्ञान के भेदों द्वारा हमें अवधि ज्ञानावरण के भेदों का ज्ञान कराया जा रहा है। तो यहाँ तो चारों गतियों की अपेक्षा से देशावधि की बात चल रही थी अपनी। उसमें हमने 19 कांडक देखे थे। क्षेत्र और काल की अपेक्षा से भेद करने वाले जो कांडक है उसमें क्षेत्र और काल की बात आती है। तो उसके 19 कांडकों की बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद देवों में उनका जघन्य उत्कृष्ट आदि जो कितने क्षेत्र तक को जानते हैं उसकी बात भी हमने पढ़ी थी। अब तिर्यंचों की बात बताने जा रहे हैं। 14 नंबर का जो यहाँ जो हम ऊपर पढ़ेंगे गाथा फिर उसका अर्थ करेंगे। तेजा शरीर लंबो उक्कसेन दुतिरक्षजोनीनं गाउद जन्म मोदी निरये सुयजो जनु कसम। तिर्यंच गति में अवधि का उत्कृष्ट द्रव्य, द्रव्य की बात है। तेजस शरीर के द्रव्य प्रमाण है, क्षेत्र भी इतना ही है। अर्थात तेजस शरीर द्रव्य के परमाणु प्रमाण आकाश प्रदेशों से जितने द्वीप समुद्र व्याप्त किए जाए उतना है। वह असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण होता है। हाँ, तेजस शरीर द्रव्य के परमाणु प्रमाण आकाश प्रदेशों से तो वो तो अनंत है। तो आकाश के अनंत प्रदेश हो जाए तो पूरे लोक के बाहर चले जाएंगे। नीचे क्या लिखते हैं? 2 नंबर तिरश्चम उत्कृष्ट देशावधि उच्चते तेजस शरीर प्रमाणम द्रव्यम कियच्च तत् असंख्येय समुद्राकाश प्रदेश परिच्छिन्ना भी असंख्येया भी तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा भी निर्वर्तितम। तावत असंख्येय स्कंधान अनंत प्रदेशान जानाति इति अर्थः। असंख्यात स्कंदों को जानते हैं, उसमें से अनंत उनको जानते हैं, इस तरह से कुछ उन्होंने अर्थ किया उसका। यहाँ उसका तो कुछ खुलासा तो दिया ही नहीं है। देखो उसमें तो ये बात है कि जो जघन्य में जघन्य देशावधि तिर्यंचों को होगा, फिर ऊपर चल के मनुष्य और तिर्यंचों के यानी मनुष्यों जघन्य में जघन्य मनुष्यों के होगा, इन बिटवीन तिर्यंचों का जघन्य शुरू होगा, फिर तिर्यंचों का उत्कृष्ट और फिर ऊपर मनुष्यों का उत्कृष्ट। سب سے ٹاپ میں ہوتا ہے, پر سرو سب سے جگنیہ کس کو ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, پرنتو اس کے ایگزیکٹ اس کے جو بیچ والے یہ رینج ہے وہ تیرین چون کی ہونی چاہیے. ہاں جگنیہ کی لمٹ ایکچولی دونوں کو سمان روپ سے ہوتا ہے کہ کیا وہ دیکھیں گے. اس میں دیکھتی ہوں کچھ ملتا ہے کیا. جیوکانڈ میں دیکھیں گے ابھی, نہیں جیوکانڈ میں کچھ ملتا ہے کیا نہیں ملتا دیکھتے ہیں. شاید مجھے وہ سنیم کی بات یاد آتی ہوگی, دیش سنیم کی, دیش سنیم کے جو ستھان ہے نا وہ جگنیہ ستھان اور اتکرشٹ ستھان, اس کی بات مجھے یاد ہوگی تیرین منشوں کی. یعنی دیش سنیم پراپت کرنے والوں کے جو الگ الگ وشدھی کے ستھان ہیں اس کی بات مجھے یاد ہوگی, کیونکہ وہ جگنیہ اور اتکرشٹ منشوں کے ہوتا ہے اور بیچ والا تیرین چون کے ہوتا ہے. یہ جو مجھے کچھ رجسٹر ہے وہ دیش سنیم کے بارے میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہی لبدی سار میں ابھی ابھی آیا تھا. یہاں تو اودھی گیان کی بات چل رہی ہے. نرک گتی میں یہ نریس جو جن اپکسم لکھے نا, گاؤ دا جہنم اودھی, نرک گتی میں اودھی کا جگنیہ کھیتر ایک کوش ہے اور اتکرشٹ کھیتر ایک یوجن ہے. کیا کیا تتوا سوتر میں, ہاں ہاں
تیجس برگا کے جو پرمانو ہے اس کو کسی کا سنکھیا سے بھاگ دیں گے تو جتنے پرمانو ہے اتنے پرمانو تتوا اس کو جان ہو سکتے.
وہ تو کیا ہے الگ الگ گرنتھوں میں سے وہاں جو لکھا ہے وہ وہاں ادھرت کر دیتے ہیں. اس کی بات آئے گی آگے شاید, ابھی تو شروعات ہے نا, وستار سے تو ہے ہی نہیں, اس میں بہت شارٹ میں دیا ہے, آگے شاید اور وستار سے بات آئے گی. یہاں کچھ نہیں ہے اس کا ڈائریکٹ, بس اتنا ہی ہے اور اس میں بھی وہ پہلے شروعات میں ہے اور کتنے پیجز لاس ہو گئے ہیں. اب آگے ہاں, کیونکہ وہاں انٹرپریٹیشن کرنے والے بھی آچاریہ تھے ویر سین سوامی. اب ہم 15 نمبر پڑھیں گے. اکس منو سے سویا منس تے رچیے جہنو دھی اکسم لوگ متم پڑیوادی تین پرم پڑیوادی. اتکرشٹ دیشاودی منشوں میں ہی ہوتا ہے جگنیہ, دیشاودی منش تیرینچوں میں ہوتا ہے. اتکرشٹ دیشاودی کا کھیتر لوک پرمان ہے, یہ پرتیپاتی ہوتا ہے ارتھات اس کے دھارک کا متھیاتوادی میں پتن سمبھو رہتا ہے. جیسے परमावधि सर्वावधि का तो नहीं होता है, परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती होते हैं। ये अभी 16 नंबर की गाथा जो पहले भी आ चुकी थी वहां ही बताया था कि ये आगे वाली है करके। परमोदी असंख्य चा लोगामेत्ताणि समय कालो दू रूवगदम लभति दौवम खेतोपम गणजीवेम। परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोकालोक प्रमाण असंख्यात लोक है। लोकालोक क्यों कर असंख्य जा लोगमेत्तानि परमावधि का उत्कृष्ट नीचे 3 नंबर उत्कृष्ट परमावधि क्षेत्रम सलोकालोक प्रमाण सलोक आलोक प्रमाण असंख्य या लोक। अच्छा नहीं, आलोक आकाश का कुछ भाग उसमें आता है ना असंख्यात लोक में, इसलिए लिया लोक और आलोक प्रमाण असंख्यात लोक है। यानी लोक और उसके बाहर का आलोक असंख्यात गुणा आलोक उसमें उन्होंने ले लिया है। क्षेत्र का इतनी कैपेसिटी है, वहां तो कुछ रूपी द्रव्य है ही नहीं है, परंतु वहां तक की जानने की उनकी यानी इतनी विशुद्धि ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। यह अग्नि का एक जीवों की संख्या प्रमाण है। ये लिखा है ना अग्नि जीवे ही, यहां तो केवल अग्नि का एक जीवों की संख्या प्रमाण इतना ही लिखा है। खेतोपम अग्नि जीवे ही, परंतु उसकी जो मैं उसको पढ़ के बताऊंगी आपको, पहले इसको पूरा करते हैं। यहां से परमावधि का काल समयाधिक लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है, यह असंख्यात वर्ष रूप है, इसका द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है। वहां लिखा ना रूवगदम लभति, रूवगदम मैंने एक में रूवगद उसका अर्थ कैसे किया पता नहीं चलता है। विशेष अवधि ज्ञान के जितने भेद कहे हैं उतने ही अवधि ज्ञानावरण कर्म के भेद है। अवधि ज्ञान का अवधि ज्ञानावरण कर्म के साथ अविनाभाव संबंध है, अतः श्रुत ज्ञान के समान यहाँ भी अवधि ज्ञान के वर्णन द्वारा अवधि ज्ञानावरण कर्म का वर्णन हुआ समझना चाहिए। इस प्रकार अवधि ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपना हुई। ये जो परमावधि के जो भेदों का जो वर्णन है ना, कितने भेद है तो असंख्यात है, तो कितने असंख्यात है तो उसके लिए कहते हैं हमने कल देखा ना अग्नि का एक जीवों की अवगाहना के भेद मल्टीप्लाइड बाय उनकी संख्या, ऐसा कुछ हमने देखा था कल। देखो परमावधि के कितने भेद है, एक गोमर सार की गाथा नंबर 393 है, वहां लिखते कि अग्निकाय के अवगाहना के जितने भेद है। अग्निकाय की सूक्ष्म में सूक्ष्म अवगाहना और उससे उत्कृष्ट अवगाहना तक के कितने भेद है तो असंख्यात भेद होंगे। अवगाहना के टेबल देखे थे ना हमने, उनसे यानी उस संख्या से अग्निकाय के जीवों के प्रमाण को गुणा करना, वो भी असंख्यात लोग है, तो आपस में गुणा करने पर जो प्रमाण आएगा असंख्यात लोक का उतने द्रव्य की अपेक्षा भेद होते हैं। अभी उसमें बहुत विस्तार से यहां अपने पढ़ा भी था हमने पहले भी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। जीव कांड में हमने विस्तार से पढ़ा था उसके सभी भेदों का प्रमाण। अब मन परे ज्ञानावरण की प्ररूपना चलेगी यहाँ पर। ये भी सब धवला टीका में हम सब पढ़ चुके हैं और ये जो नीचे फुटनोट में भी उसी को उन्होंने रेफरेंस तरीके दिया है। यहाँ लिखा है मन परे ज्ञानावरण प्ररूपणा, नीचे एक लिखते हैं उसको भी पढ़ेंगे अभी। परूपणा नाम किम उत्तम होती, प्ररूपणा किसको कहते हैं? ओघा देशे ही गुणेशु, यानी ओघ से और आदेश से, ओघ से यानी गुण स्थानों में, आदेश से यानी मार्गणों में, गुणेशु यानी गुण स्थानों में, जीव समासेषु जीव समासों में, पर्याप्ति यानी पर्याप्तियों में, प्राणेषु यानी प्राणों में, सन्नासु यानी संज्ञा में, गतिसु, अभी एक एक मैं ले लेती हूँ डायरेक्ट, यानी गतिसु इंद्रियेषु कायेषु जोगेषु वेदेषु कषायेषु नाणेषु संयमेषु दंशनेषु लैसासु भवीयेषु अभवीयेषु सम्मतेषु सन्नि असन्निषु आहारी अनाहारीषु ओजेषु जोगेषु च, ये सब 14 मार्गणाओं के नाम लिए, गति इंद्रिय काय वगैरह, इनमें पज्जत अपज्जत विशेष विशेषणे ही विशेषीण जा जीव परीक्षा, यानी इनमें पर्याप्त पर्याप्त वगैरह की अपेक्षा जीवों की जो परीक्षा सा परूपणा नाम, उसको परूपणा कहते हैं, यानी कौन से गुणस्थानों में क्या है, कौन से गति में क्या है, उस सब परूपणा में आती बात है। अब आगे पढ़ेंगे हम। यह जो मन पर्य ज्ञानावरणीय कर्म है वह एक प्रकार का है, उसकी दो प्रकार की प्ररूपणा है, एक रुजु कर्म लिखा और उसे आगे उसके भेद ज्ञान और अज्ञान। जो मन पर ज्ञान है वह एक प्रकार का है, ऐसा चाहिए क्योंकि आगे ज्ञान की प्ररूपणा चलिए। जो मन परे ज्ञान है वह एक प्रकार का, ऐसा करना। क्या दो जो लिखा है, दो आंकड़ा कहाँ है?
ऊपर 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 नीचे, यहाँ ऊपर जो दो नंबर है यम तम मण पंच
कहाँ पर दो नंबर
है?
अच्छा अच्छा ऊपर से, हाँ यम तम मन पज्जव नानावरणीयम कम्मम बंधंतो तम एयविदम। अच्छा, उन्होंने उस मूल में ही वैसे, इसीलिए उसकी उसका अर्थ भी वैसा ही किया उन्होंने, मूल में ही ऐसी बात है। यम तम मण पज्जव नानावरणीयम कम्मम बंधंतो, कम्मम फिर डाला है, तम एयविदम तस्य दुविधा परूपणा उज्जुमदि नाणम चेव विमूलमदि नाणम चेव। यम तम उज्जुमदि नाणम तम त्रिविधम, उज्जुगम मनोगदम जानदि, उज्जुगम वचिगदम जानदि, उज्जुगम कायगदम जानदि। अभी इसका ट्रांसलेशन नीचे, हाँ अच्छा समझ में आता है ना। देखो इन्हें वहाँ मूल में है इसलिए उन्होंने वैसा ही रखा है, उसको कुछ बिना कुछ चेंज किए बिना हम समझ गएंगे कि कर्म एक प्रकार का है और ज्ञान की अपेक्षा उसकी प्ररूपना दो। अभी आगे ज्ञान की अपेक्षा सारा कथन आता है, एक रुजमति ज्ञान, दूसरा विपुलमति मन परे ज्ञान। एक में रुजुमति ज्ञान लिखा और विपुलमति के लिए पूरा मन परे शब्द लगाया। रुजुमति विपुलमति है ना, दोनों रुजुमति मन परे और विपुलमति मन परे, या एक रुजुमति दूसरा विपुलमति और दोनों के मिलकर मन परे ज्ञान, ऐसा भी चलेगा। जो रुजुमति ज्ञान है वह तीन प्रकार का है। वह सरल मनोगत पदार्थ को जानता है, सरल वचनगत पदार्थ को जानता है, सरल कायगत पदार्थ को जानता है। यह आगे विशेषार्थ में देखेंगे। ये वचन यदि तीनों को ही जानता है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि सामने कोई जीव खड़ा है ना, तो उसने क्या बोला था ऐसा विचार कर रहा है कि एक्शन की थी, या उसके एक्शन से उसके वचन से बात, काय के एक्शन देखो। ये इसमें अर्थ मन को प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला, वचन को प्राप्त हुए अर्थ को और काय को प्राप्त हुए अर्थ को, ऐसा तीनों ही लगाना है, रुजुमति में भी और विपुलमति में भी। इन्हें सरलपणे मन वचन काय द्वारा किया जो अर्थ कम अन्य जीव के मन में चिंतन रूप प्राप्त हुआ, इन्हें मन के द्वारा जो सोचा था, वचन के द्वारा किया था, काय के द्वारा जो किया था, वो अन्य के मन में आया है उसको जानता है, इस तरह से देखा। यहां लिखा ना, सरल मनोगत पदार्थ को, वचनगत पदार्थ को, सरल कायगत पदार्थ को जानता है। यह रुजुमति ज्ञान मन से यानी मति ज्ञान से अन्य जीव के मन को अथवा मनस्थित पदार्थ को ग्रहण करके मन परे ज्ञान के द्वारा अन्य की संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, मति, चिंता आदि को जानता है। ये संज्ञा को प्रत्यभिज्ञान कहते, अभी शब्द आया था किसमें आया था, तत्वार सूत्र क्या कहते हैं, कोई दूसरा जीव उसके मन में जो प्रत्यभिज्ञान चल रहा है, वो जो स्मरण कर रहा है, ये जो चिंता आदि ने विचार कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, वो सबको वो जानेंगे। विशेषार्थ मन से अर्थात मति ज्ञान से मानसिक पदार्थ को, वहां परे को, उसकी अवस्था को ग्रहण करना मन परे ज्ञान है। मति ज्ञान मन परे में अवलंबन मात्र है, कारण रूप नहीं है। यानी जो हमने देखा ना, मति ज्ञान पूर्वक मन परे होता है, इसलिए कल चर्चा जो हुई थी उसके पहले वो दर्शन नहीं लगाते हैं। जैसे आकाश में स्थित चंद्र दर्शन के लिए वृक्ष की शाखादि की सीध का अवलंबन मात्र लिया जाता है, चंद्र दर्शन में कारण तो नेत्र की शक्ति है। उसके लिए नीचे दो नंबर लिखा है, यथा अभ्रे अभ्रे ने आकाश में चंद्रमसम पश्येति, यानी चंद्रमा को देखते हैं, अभ्रम अपेक्षा कारण मात्रम भवति, नच चक्षुरादिवत निर्वर्तकम चंद्र ज्ञानस्य। यह अभ्र को लिया है, अभ्र मेघ को कहते हैं कि नहीं, आकाश को, नहीं नहीं, नहीं। निरभ्र ने अभ्र ने वो बादल बादल सॉरी आकाश ने मेघ मेघ अभ्र ने मेघ क्योंकि निरभ्र आकाश को कहते ना रब बिना मेघ का होगा बिना बादल का तो निरभ्र आकाश कहते यथा अभ्रे चंद्रमसम पश्यति अभ्रम अपेक्षा कारण मात्रम भवती नच चक्षुरादिवत निर्वर्तकम चंद्र ज्ञान से यानी चंद्र ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हुए नहीं है अभ्र है वो चंद्र ज्ञान को उत्पन्न नहीं करने वाले तथा अन्य दीय मनो अपि अपेक्षा कारण मात्रम भवती परकीय मनसी व्यवस्थितम अर्थम जानाति मन पर्य जैसे आकाश में चंद्र है या किसी बादल पर चंद्र है तो वो तो दिखाने के लिए बस वहां स्थित है उसके लिए वैसे ही ये पदार्थ कहाँ है तो दूसरे के मन में स्थित है इतने मात्र वो पर के मन को जानने की जो बात की है उसके लिए उसको पर के मन को जानते है सकेंगे ततो न अस्य तदायत्त प्रभव इति न मति ज्ञान प्रसंग यानी ये मति ज्ञान नहीं है ये मन परे ज्ञान अलग है ये बात बता रहे हैं
जैसे आकाश से चंद्र दर्शन के लिए विश्व की शाखा दिखा सीधा अवलंबन मैंने चांद का वो झाड़ है ना उसके ऊपर भी गुरु को ऐसे उसी अब कभी लोग तो ऐसा दिखा दे तो वो ये करते थे शाखा को देखेंगे तो शाखा ही देखेंगे उसके सीध में देखना है तो फिर चंद्र में देखेंगे ऐसा दोस्तों शाकाहारी का अवलंबन लिया जाता है वैसे जीव के मन में जो बातें स्थित है
वो कहाँ स्थित है तो मन में है इसलिए वो उसको मन को जानता है ऐसा कहेंगे या मन में स्थित पदार्थों को भी मन कहने में आता है इसलिए मन को जानता है ऐसा भी कहेंगे जैसे इंद्रियों के विषयों को भी इंद्रिय कहते हैं ना ऐसे मन में स्थित पदार्थों को भी मन कहेंगे तो ये मन को जानता है ऐसा कथन होगा अब यहाँ हम पढ़ रहे थे नीचे वो अवलंबन मात्र है चंद्र दर्शन के कारण नेत्र की शक्ति है इसी प्रकार मनोगतादि भावों का मनोगत यानी मन में जो चल रही है बातें उन भावों का परिज्ञान करने में मन परे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम कारण हमें आपको क्यों नहीं होती ये बात ये क्यों नहीं ये ज्ञान तो क्या है उसका वहाँ उनका क्षोभम है हमारा आपका क्या है उदय है मन अथवा मति ज्ञान अवलंबन मात्र है विपुल मति मन परे ज्ञान मन के द्वारा अचिंतित अथवा अर्धचिंतित पदार्थ को भी ग्रहण करता है यानी अभी तो उसने वो सोचा भी नहीं है सोचने वाला है चार आठ भाव के बाद तो भी उनकी वो जानने की उनकी सामर्थ्य है यह रुजुमति मन परे ज्ञान वत्तमानानम यानी व्यक्त मन वाले संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित मन युक्त अन्य जीवों के एवं अपने अथवा वर्तमानानं का दूसरा अर्थ वर्तमान जीवों के वर्तमान में मनस्थित त्रिकाल संबंधी पदार्थ को जानता है वर्तमानानं इसके दो शब्द होते हैं वत्त ने व्यक्त ऐसा भी अर्थ किया और वर्तमान ने वर्तमान ऐसा भी अर्थ किया उन्होंने अब उसके लिए अभी उन्होंने नीचे तीन नंबर दिया है ये कहां पर आ गई बात अच्छा वो आगे की बात है समझ में आई ये बात यानी व्यक्त मन वाले और दूसरा वर्तमान जीवन के वर्तमान में जो मन में जो जीव पूर्व का या भविष्य का जो कुछ चिंतन कर रहे हैं उस संबंधी जानते हैं। अतीत अथवा अनागत मनोगत पदार्थ को यह रुजुमति नहीं जानता है।
अभी जो मिथ्या सामने वाला मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या है, तो उसके मन में जो पदार्थ में जो ज्ञान हो रहा है उसको वो सही तरीके से जानेगा कि ऐसे ही जानेगा जो वो सोचता है।
उसके मन में वो क्लैरिटी है कि नहीं है उन पदार्थों को ये जानते हैं, जिसे हम कहते हैं सरल मन वाले को जानते हैं, वक्र वाले को नहीं जानते, इस तरह से लेना उसको। वो संशय विपर्य ने वो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं इसकी बात हो उसकी बात नहीं
है वाला जीव जो मिथ्या दृष्टि
वो ये वो कुछ सोच रहा है, ये सोचने के जो उस पदार्थ के बारे में क्लैरिटी है कि सोचने में क्या इसे कुछ कंफ्यूजन है सोच रहा है इसकी बात चल रही है, सामान्य लेना उसमें। वो मिथ्या दृष्टि वाला है वो संशय से ही जानते हैं आत्मा अनात्मा, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। वो मिथ्या दृष्टि के समय दृष्टि जानने वाला उसकी बात नहीं है यहाँ पर।
नहीं, ये जो जानने वाला है जो वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं, जानने वाला तो
अरे जानने वाले तो मुनिराज है,
तो इसीलिए मैंने पूछा अभी वो तो उसके बारे में जो सामने वाला आदमी जो गलत सोच रहा है वो ऐसे जानेगा कि सही रूप से जानेगा।
अगर वो गलत रूप से जानेंगे तो उनको मन पड़ेगा नहीं, कौन कहेगा।
ये देखिए, अभी मान लो कि आप मुनिराज है और वहाँ हमारे विनोद भाई बैठे, वो वहाँ बैठे थे, उनके हाथ में कुछ चीज है, तो मैंने समझा कि वो पेन है, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो पेन है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो नहीं नहीं, पेन नहीं, तो पेंसिल लिख रही है, तो संशय चल रहा है। सुनो, तो आप मेरे मन की बात देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मिथ्या दृष्टि तो है, उसकी तो चिंता ही नहीं है, लेकिन उसके मन में उस पदार्थ के बारे में जो संशय चल रहा है
वो उसी वो संशय रूप जानेगा कि सही रूप
संशय रूप से जानेगा ना। वहाँ तो कहा रहित लिखा है भाई,
सरल मन वाले रुजुमति क्यों ना हो दिया, सरल मन वाला
यानी बिल्कुल इसकी कोई
रेगुलर जो सही
वक्र चिंतित है, जो कह रहे हैं ऐसे संशय वाले विपरीत जानने वाले वो बिल्कुल नहीं जानते।
हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। यह वर्तमान अथवा व्यक्त मन वाले जीवों के जीवन, हम कहते ना व्यक्त मन, यानी हम कहते हम तो जो कॉन्शियसली जो हमारे जो चिंतन चल रहा है, अव्यक्त यानी जिसको हम कहेंगे ना सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चलता है वो उस जीव के लिए भी व्यक्त नहीं है, बात है ना। इसे भी हो सकती है कि नहीं, या कोई जो सूक्ष्म चिंतन चल रहा है वो उसके भी अपने ध्यान में नहीं आ रहा, तो ऐसे को नहीं है। यहाँ व्यक्त शब्द डाला है उन्होंने, तो व्यक्त मन वाले वर्तमान अथवा व्यक्त मन वाले जीवों के जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख नगर विनाश देह विनाश जनपद विनाश अतिवृष्टि अनावृष्टि सुवृष्टि दुवृष्टि सुभिक्ष दुर्भिक्ष क्षेम अक्षेम भय रोग उद्भ्रम विभ्रम तथा संभ्रम को जानता है। अब यहाँ संभ्रम को भी जानता है लिखा ना, तो परंतु उसके जो मन में जो है वो मन के द्वारा जो सोचता है उसके बारे में ये बात है, जो उसके भी मन में जो सोच रहा है वो उसके भी ख्याल में नहीं आ रहे उसकी बात नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं।
वो है संशय, विभ्रम यानी विपरीत विपर्य और संभ्रम यानी अनुदेव।
यह रुजुमति जघन्य से कोष पृथक्त्व, कल भाई बात आई थी, और उत्कृष्ट से योजन पृथक्त्व के भीतर जानता है, बाहर नहीं जानता। काल की अपेक्षा जघन्य से दो तीन भव और उत्कृष्ट से सात आठ भव ग्रहण संबंधी गति आगति का प्रतिपादन करता है। यानी वो तो वर्तमान में वो सोच रहा है, वो भविष्य संबंधी सोच रहा है या भूत संबंधी सोच रहा है, वो जीव यानी भविष्य का कुछ प्लानिंग कर रहा है उसको जानेंगे, परंतु विपुल मति भविष्य में जो सोचेंगे उसको भी जानेंगे। ये रुजुमति की, इसलिए ऊपर लिखा है ना, वर्तमान में जो उनके मन में स्थित है उसको जानेंगे, अतीत अनागत मनोगत पदार्थ को नहीं जानेंगे, ये बात यहां लिख दी। उसमें आता है इतने भवों तक, यहां लिखा है ना, सात आठ भव ग्रहण संबंधी गति आगति का, यानी कहां जन्मेगा क्या, ऐसी बातें, परंतु अभी उसमें वो देखो वो चार नंबर नीचे लिखते हैं, वर्तमान भव ग्रहणेन विना दोन्नी तेन सह तिन्नी भव ग्रहणानी जान दीती। वर्तमान भव ग्रह को छोड़कर दोन और उसके सहित तीन भव ग्रहणों को जानता है। भव ग्रहण जानने न दौनी तीननी भव ग्रहणानी, भव ग्रहण यानी वो कौन से भव ग्रहण करेगा उसकी बात उन्होंने यहाँ दी अर्थ में। विशेष
तो उसके अंदर मन में जो बात होगी वही जानेंगे ना,
वही जानेंगे उसमें। यहाँ तो आगे की चिंतन करेगा की बात आई थी, रुजुमति विपुलमति ज्ञान के विषय है, वे शब्द को व अर्थ को प्राप्त होने पर प्रकट होते हैं। कैसे वो कहते हैं, कोई भी सरल मन से निष्पन्न होता हुआ त्रिकाल संबंधी पदार्थों का चिंतन हुआ व सरल वचन से निष्पन्न होता हुआ उन्हें कहने लगा व सरल काय से निष्पन्न होता हुआ उन्हें करने लगा, यानी किसी ने कुछ सोचा था किया था बोला था फिर भूल गया, पश्चात भूल कर कालांतर में याद करने को समर्थन नहीं हुआ और आकर रुजुमति मनपरे ज्ञानी को पूछने लगा अथवा याद करने के अभिप्राय को धारण कर मौन सी से खड़ा रहा। अभी वो उस संबंधी सोच रहा है कि मैंने क्या बोला था, मैंने क्या किया था, चल में एक बार हाँ। वहां रुजुमति मन परे ज्ञान स्वयं एव सर्व को जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं मैंने क्या बोला था, तो उस संबंधी वो जानेंगे। वैसे ही सरल व वक्र, अभी जो विपुल मति है वो वक्र को जानेंगे तो क्या वो सरल को नहीं जानेंगे? जानेंगे, उनका विषय तो और अधिक है सूक्ष्म। तो सरल या वक्र मन वचन काय से निष्पन्न होता हुआ त्रिकाल संबंधी पदार्थों का चिंतवन करने लगा, कहने लगा व करने लगा। पश्चात भूलकर कितने ही काल बाद याद करने को समर्थन न हुआ, आकर विपुलमति मनपरे ज्ञानी के निकट पूछने लगा व मौन से खड़ा रहा। वह विपुलमति मनपरे ज्ञान सर्व को जानता है, ऐसा इनका स्वरूप। हाँ, यानी वो तो सामने आकर खड़ा है, पूछा या नहीं भी पूछा है यह बोल की बात नहीं। उन्होंने सरल मन से क्या किया था, क्या बोला था, क्या या ऐसा मैं कौन सा भाव में था, इस तरह से भी है तो वो जानते हैं उसको। यानी त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को वर्तमान काल में कोई चिंतन करता है तो रुजुमति जानेगा, और त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य के किसी जीव ने अतीत काल में चिंतन किया था भविष्य काल में करेगा वो विपुलमति भी जानेगा। रुजुमति तो वर्तमान में वो क्या चिंतन कर रहा है त्रिकाल संबंधी पदार्थों के बारे में वो जानते हैं, और ये विपुलमति वो चिंतन अभी नहीं, वो पास में किया था भविष्य में करेगा उसको भी जानते हैं। अब यहाँ ये धवला कौन सी पुस्तक की बात है, धवला टीका पहले नंबर में ही होगी ना, अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे विशेषार्थ में आए ना 31 पेज पर। यदि वर्तमान भव को ग्रहण करते हैं तो 3 भव होते हैं, यदि वर्तमान को छोड़ दिया जाए तो 2 भव होते हैं। इस कारण 2 भव या 3 भव संबंधी कथन में विरोध का सद्भाव नहीं रहता। 7-8 भव की गति अगति के विषय में भी यही समाधान है, वर्तमान भव को सम्मिलित करने पर 8 भव, उसको छोड़ने पर 7 भव होते हैं। जो विपुलमति मनपरे ज्ञान है वह 6 प्रकार का है। वह सरल मनोगत पदार्थ को जानता है, सरल वचनगत पदार्थ को जानता है, सरल कायगत पदार्थ को जानता है, कुटिल मनोगत पदार्थ को जानता है, कुटिल वचनगत पदार्थ को जानता है और कुटिल कायगत पदार्थ को जानता है। ये सरल को जानने वाला मात्र सरल को जानेंगे, और ये विपुलमति वो तो सरल को भी और कुटिल को भी सबको जानेंगे। यह वर्तमान जीव तथा अवर्तमान जीवों के अथवा व्यक्त मन वाले तथा अव्यक्त मन वाले जीवों के द्वारा चिंतित अचिंतित सुख दुख लाभ अलाभ आदि को जानते हैं। इसका क्षेत्र जघन्य से योजन पृथक्व है, विपुलमति की बात है। वहां कितना था, कोष पृथक्व, और उसका उत्कृष्ट योजन पृथक्व था। इसका जघन्य योजन पृथक्व है और उत्कृष्ट से मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर जानता है, बाहर नहीं जानता। विशेषार्थ विष्कम्भ का अर्थ सर्कल नहीं होता, विष्कम्भ ने उसकी चौड़ाई, वृत्ताकार का अर्थ होता है गोल, ये वृत्ताकार नहीं है। कहने दो ना, गोल के भी लिए चौकोर के लिए भी विष्कम्भ शब्द आता है। देखो विशेषार्थ देखेंगे, मन परे ज्ञान का क्षेत्र 45 लाख योजन वर्तुलाकार न होकर विष्कम्भात्मक है, चौकोर रूप है। चौकोर बताए ना, और यहाँ भी लिखा नीचे दो नंबर देखो, नर लोयतीय वयनम विखंब नियामयम न वट्टस वर्त, यानी वो वर्तलाकार नहीं है। तम्मा तक घन पदरम मण पज्जव खेतम उद्दीप्तम। घन प्रतर है, घन प्रतर, प्रतर यानी ये जो स्क्वायर है उसको हम प्रतर कहेंगे, परंतु ये घन प्रतर यानी कुछ हाइट भी उसको कितनी है, तो मनुष्य लोग की जितनी है इसकी। अतएव ऊपर मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के कोण में स्थित विषयों को भी विपुलमती ज्ञान वाला जानता है, लिखा है ना कल तत्कार सूत्र में, मैंने यही बात बताई थी। वहाँ उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, जो कुछ मैंने ये जो याद था उसी की बात बोली थी। ये क्यों याद था, क्योंकि वो रेवती ने प्रश्न पूछे थे, महाराष्ट्र में कोई है ऋषि, उसने प्रश्न पूछे थे और उन्होंने वो 22.5 लाख योजन की त्रिज्या वाला ऐसा होता है, ऐसे ऐसे चित्र भी उन्होंने किसी ने बनाए है पहले किसी, अभी मुझे नाम पक्का याद नहीं उनका, तो उन्होंने वो रेफरेंस बता के मुझे भेजा था। तो इसमें क्या सुधारना है, बोले ये तो पूरा गलत है, धौला में तो स्पष्ट शब्द से लिखा है वो वृत्ताकार है ही नहीं है, और चतुष्कोण की भी बातें आई है।
पर्वत के बाहर के कौन में स्थित विषय को भी, अभी ये तो जो मन में जो चल रहा है भूतकल के बारे में जो विचार उसको जानेगा, तो मन तो मनुष्य तो पर्वत के अंदर ही होगा, तो मन मन की मन में जो वार के पदार्थ उसका जो चिंतन हो रहा है उसको जानेगा।
पर्वत के बाहर स्थित कोई तिर्यंश और देवों के मन में स्थित पदार्थ ऐसा ले लो, काल की अपेक्षा वह जघन्य से सात आठ भव, उत्कृष्ट से असंख्यात भवों की गति आगति का प्ररूपण करता है। यहाँ गति आगति लिखे, भवों में वो जानने वाले पदार्थों की बात नहीं, गति आगति कहाँ जाएगा आएगा उसकी बात है यहाँ पर। विशेष, विशेष में वो शंका पूछ रहे हैं, इस मनपरे ज्ञानावरण प्ररूपणा में मनपरे ज्ञान का निरूपण क्यों किया गया, ज्ञान में कर्मत्व का समन्वय कैसे होगा, जो पहले जैसा प्रश्न पूछा था वैसा ही है। मनपरे ज्ञानावरण के द्वारा मनपरे ज्ञान आवृत होता है, या आवरण किए जाने वाले ज्ञान में आवरण अर्थात मनपरे ज्ञानावरणीय कर्म का उपचार किया गया है, इस प्रकार मनपरे ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपणा की गई। या उनका मुख्य तो कर्म की प्ररूपणा, इसलिए ज्ञान की प्ररूपणा में उन्होंने अधिक यहाँ विस्तार नहीं लिया है, जो बात धवला में आ चुकी है ज्ञान के कथन में। अब केवल ज्ञानावरण प्ररूपण, जो केवल ज्ञानावरणीय कर्म है वह एक प्रकार का है, उसकी प्ररूपणा की जाती है। जिनेन्द्र भगवान को केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की उपलब्धि हो चुकी है, वे स्वयं स्वर्गवासी देव, असुर अर्थात भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी देव, तिर्यंच तथा मनुष्य लोक की गति आगति चयन उपपाद बंध मोक्ष वृद्धि युति यानी जीवादि द्रव्यों का मिलना अनुभाग तर्क पत्र छेदन आदि कला मन जनित ज्ञान मानसिक विषय राज्यादि एवं महावृतादि पालन करना रूप भुक्ति पालन करने रूप भुक्ति वृत्त प्रसिद्ध सेवित यानी त्रिकाल में पंचेंद्रियों के द्वारा सेवित आदि कर्म अर्ह अर्थात अनादि कर्म को सर्वलोक में सर्व जीवों के सर्व भावों को युगपत सम्यक प्रकार से जानते हैं। विशेषार्थ, केवली भगवान त्रिकाल अवच्छिन्न लोक अलोक संबंधी संपूर्ण गुण पर्यायों से समन्वित अनंत द्रव्यों को जानते हैं, ऐसा कोई गेय नहीं हो सकता जो केवली भगवान के ज्ञान का विषय न हो। ज्ञान का धर्म ज्ञेय को जानना है और ज्ञेय का धर्म है ज्ञान का विषय होना। इनमें विषय विषयी भाव संबंध है। जब मति और श्रुत ज्ञान के द्वारा भी यह जीव वर्तमान काल के सिवाय भूत तथा भविष्यत काल की बातों का परिज्ञान करता है, तब केवली भगवान के द्वारा अतीत अनागत वर्तमान सभी पदार्थों का ग्रहण करना युक्त युक्त ही है। क्या मति ज्ञान के द्वारा हम भविष्य को जानते हैं क्या भाई? जानते कि नहीं जानते? उसमें लिखा है, आप क्या कहते हो? हम आपको पूछेंगे, आप जानते कि नहीं जानते? अपने क्लास कितने दिन बंद रहने वाले अभी? ये तो भविष्य काल है, आपने कैसे जाना? अभी आज कौन वार है?
मंगलवार।
कल ये कैसे जाना? कल सूर्य कब उगेगा? सुबह के दोपहर को? अभी कोई बात होती है, ये बच्चा भी छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, इतने हाइट बढ़ेगी, भविष्य की बातें हम जानते कि नहीं जानते? उसमें अभी तर्क करो, अनुमान करो, अन्य भी जो कोई बातें हैं हमारे अनुभव से, हम एक्सपीरियंस से, उसका नाम कुछ भी दे दो। आगम के द्वारा तो भविष्य की बातें, हम भविष्य के काली तीर्थंकर कौन होने वाले पहले?
हाँ,
सैनिक राजा। कैसे जाना? आगम से जाना है ना? तो आगम पढ़ा हमने तो जाना। तो ये मति श्रुत ज्ञान के द्वारा भी हम जानते कि नहीं जानते? ये सारा निमित्त ज्ञान क्या है? सारा श्रुत ज्ञान जो है ना, स्वप्न देख के या कोई शरीर का अंग देख के, कल बात आई थी ना श्रुत निमित्त ज्ञान की, महानिमित्त ज्ञान की। तो भूमि देखकर, अंतरिक्ष, हम बादल छा जाते, अरे नहीं अभी बरसात आने वाली है, बहुत गर्मी है तो ये ऐसा होने वाला, ये कैसे जाना हमने? भविष्य को जाना कि नहीं जाना? मति श्रुत ज्ञान से जानते हम। तो कहते साधारण हम आप भी मति श्रुत ज्ञान से भी जानते हैं भूत भविष्य की बात, तो ये तो केवल ज्ञान की बात है। चलो यहाँ लिख रहे, ये युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त है ना, वो तो बात सहज सिद्ध होती है। प्रतिबंधक ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर आत्मा सकल पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है। ज्ञानावरण कर्म जो है उसका पूरा ही नाश होने पर सभी पदार्थों का साक्षात्कार वो जान लेते हैं। जैसे प्रदीप का प्रकाशन करना स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञान का भी स्वभाव स्व तथा पर का प्रकाशन करना है। यदि क्रमपूर्वक केवली भगवान अनंतानंत पदार्थों को जानते तो संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार न हो पाता। अनंत काल व्यतीत होने पर भी पदार्थों की अनंत गणना अनंत ही रहती। ख्याल में आती बात? यदि वो क्रम से जानते तो क्या दोष आता? तो अनंत काल जानते रहे फिर भी पदार्थ तो अनंत है और उनका जानने का भी चलता ही रहेगा। आत्मा की असाधारण निर्मलता होने के कारण एक समय में ही सकल पदार्थों का ग्रहण होता है। जब ज्ञान एक समय में संपूर्ण जगत का या विश्व के तत्वों का बोध कर चुकता है, तब आगे वह कार्यहीन हो जाएगा, यह आशंका भी युक्त नहीं है। अब सब जान लेना, अभी कुछ नहीं करने को जाए, कारण काल द्रव्य के निमित्त से तथा अगुरु लघु गुण के कारण समस्त वस्तुओं में क्षण क्षण में परिणमन परिवर्तन होता है। जो कल भविष्यत था वह आज वर्तमान बनकर आगे अतीत का रूप धारण करता है। आज जिसे वो भविष्य की भविष्य को नहीं जानते वो बात नहीं, जो भविष्य वर्तमान को वर्तमान रूप से, भूत को भूत रूप से, भविष्य को भविष्य रूप से वर्तमान में जान रहे, फिर भी जो बात बीत चुकी वो वर्तमान रूप से जान रहे कि अतीत हो गया ऐसा जानेंगे। वर्तमान में जान रहे पर तो वर्तमान पने से जान रहे कि भविष्य भूत पने से जान रहे, तो उनका ज्ञान खोटा हो जाएगा। जो बीत चुका उसको भी वर्तमान में ऐसा जानेंगे क्या? या वर्तमान वत जान रहे परंतु वो बात बन चुकी है ऐसा जानेंगे कि अभी बनने वाली है जानेंगे कि बन रही है जानेंगे? हाँ यही बात कुछ जो बनी, जैसे देवीनाथ भगवान की वो द्वारका कब तक रहेगी, किसी के प्रश्न आया तो क्या उनके वाणी में क्या आया, 12 साल बाद ये ऐसे ऐसे निमित्तों से वो जलेगी। अभी वो 15 साल के बाद उनके केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है, वो जलने वाली तो उन्होंने पहले ही जान ली थी, तो वो 3 साल हो गए अभी उस घटना को, ऐसे जानेंगे कि नहीं जानेंगे? ख्याल में आई बात? इस प्रकार
घटना को वर्तमान में भी प्रत्यक्ष जानते,
प्रत्यक्ष भले जाने परंतु वो बात अभी घटने वाली है कि घट चुकी है ऐसे जानेंगे?
घट चुकी वो हिसाब से वैसे जानेंगे।
हाँ इतना तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अरघु गुण के कारण प्रत्येक पर्याय में जो षट्स्थान प्रतिथानि वृद्धि यानी अविभाग प्रतिच्छेदों की जो हीनाधिकता होती है वो तो अनादि से होती रहती, वो तो स्वभावार्थ पर्याय है, हमने तो देखे थे। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण के प्रत्येक पर्याय में षट्स्थान प्रतिथानि वृद्धि के जो अविभाग प्रतिच्छेद होते ही रहते हैं, केवल ज्ञान में भी होते रहते हैं, उसके भी अविभाग प्रतिच्छेदों में ही ना दिखता होती है। क्षण क्षण में परिवर्तन परिणमन वर्तन होता है। हमें तो कहते हैं कैसे तो ऐसी की ऐसी दिख रही है, अभी उसके एक एक गुण के एक एक जो कुछ पर्याय है उसमें भी हीना दिखता हो रही है। वो हमारे पकड़ में आए नहीं आए उसकी बात नहीं है, क्या क्या रहते हैं अरुगुण के बारे में? अच्छा परसों हमने कौन सा पढ़ा था उसमें भी अगुर लघु के बारे में, केवल ज्ञान में भी वो मेरे ख्याल समय समय सार नाटक प्रवचन में किस में आया था हमने यार? शायद अनुभव प्रकाश के प्रवचन में होगा, मैंने बोला भी था कि केवल ज्ञान में जो प्रति समय जो सभी के सभी 12 की हानि वृद्धि एक समय में नहीं होती, प्रत्येक समय में जो अलग अलग चलता रहता है। अच्छी बात, वो उसी में आया है अनुभव प्रकाश के प्रवचन में, रविवार को यह हमने पढ़ा था।
केवल ज्ञान में जो हानि वृद्धि होती है उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो जो निर्बल हो गया है ज्ञान
निर्मलता की कहाँ की बात है, फिर भी उसमें जो कुछ मर्यादा में जो हीना दिखता होती है पूरा का पूरा जान लेते हैं अनंत विभाग में, अब उसमें मर्यादा में थोड़ा हीना दिख होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल होगी, अगुरु गुरु गुण क्या करेगा फिर? वो तो उन्होंने ऐसा किया कि थाली का एक पानी एक बाजू जाता है दूसरे बाजू जाता है, वो वहाँ फिट नहीं बैठता है।
यहाँ ये बात बता रहे हैं कि शटर में हानि और वृद्धि एक समय में नहीं होती,
एक समय में कोई एक हानि या वृद्धि होगी,
पर्याय के कितने भेद होते हैं?
नहीं नहीं वो कथन की अपेक्षा वहाँ भेद बताया, मैंने सुना है वो कि जो हानि है वो किसी अपेक्षा वही वृद्धि है, वही हानि वही उसी एक ही पर्याय पर सब घटित कर रहे हैं, वो तो हम घटित करते हैं ऐसा नहीं है। गुरु लघु गुण के द्वारा एक्चुअली अविभाग प्रतिच्छेदों की हीना दिखता होती है। अब यहाँ बढ़ेंगे आगे। इस प्रकार परिवर्तन का चक्र सदा चलने के कारण ज्ञेय के परिणमन के अनुसार ज्ञान में भी परिणमन होता है। यानी उन्होंने ज्ञेय के परिवर्तन के पहले उसको जान लिया, उसकी बात नहीं हो रही है। जगत के जितने पदार्थ हैं, उतनी ही केवल ज्ञान की शक्ति या मर्यादा नहीं है। क्या लिखा है? इसी पॉइंट पर चलता है ना अपना बहुत बार विवेचन। चलो महाबंध में भी मिल गया, उस दिन जयधवला में भी बताया था आपको। जगत के जितने पदार्थ है या ज्ञेय है, उतनी ही उसकी मर्यादा नहीं है। क्योंकि इसके लिए हम कितने अवधि ज्ञान का भी उदाहरण देते हैं, आकाश द्रव्य का देते हैं। आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व शक्ति इतनी है कि उसके अनंत वे भाग में अन्य सभी द्रव्य समा जाते हैं। लोकाकाश कितना है? पूरे आकाश द्रव्य के अनंत भाग में वो सारे पदार्थ उसमें अवगाहना पा लेते हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान की इतनी अनंत शक्ति है, उसके अनंत वे भाग में सभी ज्ञेय जाने जाते हैं। केवल ज्ञान अनंत है, यदि लोक अनंत गुणित भी होता, लोक नहीं लोकालोक चाहिए, तो केवल ज्ञान सिंधु में वह बिंदु तुल्य समा जाता। विशेषार्थ में लिखा है लोक यानी लोक का लोक ज्ञान है। यहाँ इस केवल ज्ञान की प्राप्ति मुख्यतः से ज्ञानावरण के क्षय से होती है, किंतु ज्ञानावरण के साथ दर्शनावरण तथा अंतराय का भी क्षय होता है। ये हमने इसकी भी बात अभी जयधवला में 16वें नंबर में हमने देखी थी कि वीर्यांतराय का वहां पूरा क्षय हुए बिना ज्ञान ने जो जाना है तो जीव खेद को प्राप्त होगा, नहीं तो, उसको टिकाए रखना, उतना जानते रहना, इतना बल हर समय लगाना, ये वीर्यांत का काम है। अनंत वीर्य नहीं होता तो एक समय में जान लिया तो जीव थक जाता, लेकिन वहां वीर्य का भी काम चल रहा है। उतना ही क्षोभशम में भी हमेशा ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभशम से ऐसे शब्द हमेशा आते हैं, दोनों एक साथ लेते हैं कि जो कुछ पर्याय हो रहे उसमें उस स्वरूप से टिकाए रखना, वो वीर्य का काम, जीव का जो बल लगता है उसमें वो उसमें काम करता है। यानी ज्ञानावरण के साथ हमेशा वीर्यांतराय को ले लेते हैं और दर्शनावरण को भी ले लेना इसके साथ। इन तीन घातिया कर्मों के पूर्व मोह का क्षय होता है। मोह क्षय हुए बिना कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। उसको ऐसा कहते हैं, निर्दोष हुए बिना निरावरण नहीं हो जाता। दोष यानी वो राग, राग रूप दोष। उज्ज्वल तथा उत्कृष्ट ज्ञानों की प्राप्ति के लिए मोह का निवारण होना आवश्यक है। अनंत केवल ज्ञान के द्वारा अनंत जीव तथा अनंत आकाश आदि का ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ शांत नहीं होते हैं। अनंत ज्ञान अनंत पदार्थ या पदार्थों को अनंत रूप से बताता है। इस कारण ज्ञेय और ज्ञान की अनंतता अबाधित रहती है। ये उन्होंने जान लिए इसलिए पदार्थ का अंत आ गया, तो ऐसा भी नहीं। कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं सर्वज्ञ का भाव सकल पदार्थों का अवबोध नहीं है, किंतु केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उपचार से सर्वज्ञ कहलाता है। वास्तव में सर्वज्ञ कोई नहीं है, यह धारणा भ्रांति पूर्ण है, धारणा नहीं, यह मान्यता ये कोई सोचते है कि पदार्थों का अंत आ जाएगा, शांत हो जाएगा तो नहीं होते। दूसरी कौन सी बात है?
कोई सोचते है कि समुद्र का भाव सकल पदार्थों का अवबोध नहीं करे, एक आत्मा है, केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उपचार से सर्वज्ञ कहे।
नहीं, जिसको आत्मज्ञान हुआ उसी को सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसा कोई मान नहीं है।
तीसरा है वास्तव में सर्वज्ञ है, तीनों को एक साथ लपट लिए।
ये धारणा भ्रांतिपूर्ण है। सब ज्ञान सॉरी जब ज्ञान क्षावश्रमिक अवस्था में रहता है तो वह अनेक पदार्थों का साक्षात्कार करता है। जब वह ज्ञान क्षायिक अवस्था को प्राप्त करता है तब उस ज्ञान को न्यून बताकर आत्मा के ज्ञान रूप में सीमित सोचना असम्यक है। यानी जब क्षावश्रमिक ज्ञान है, हम आप कितने पदार्थों को जान रहे हैं, और केवल ज्ञान हुआ तो बस आत्मा को ही जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता। क्षायिक अवस्था में आबाधा वाले दूर होने पर ज्ञान की वृद्धि स्वीकार न कर उसे न्यून मानना अयोग्य है। शंकाकार यह सोचे कि किस कारण से सुविकसित मतिशुत अवधि तथा मनपर्य रूप ज्ञान चतुष्टय क्षीण होकर कैवल्य काल में आत्मा के ज्ञान रूप में सीमित हो जाते हैं। यानी जो अभी श्रेणी चल रहे हैं, मुनिराज है, मति शुद्ध ज्ञान का कितना भी शुद्ध केवली हो गए, हम शुद्ध केवली की बात करेंगे। अवधि ज्ञान भी है, सर्वावधि वाले है, शुद्ध केवली है, और मनपरे ज्ञानी है, ऐसे ज्ञान, इन ज्ञान इतना विकसित हो गया, और कोई माने कि सर्वज्ञ भी आत्मा को जानते, सबको नहीं जानते, तो इतना विकसित ज्ञान सिमट कर अकेले आत्मा को जानने लग जाए, यानी उसका ज्ञान का विकास हुआ तो वो मिट जाए, तो ऐसा क्यों होने लगे? उल्टा तो उससे भी और ज्यादा विकास होना चाहिए था। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। प्रतिबंधक सामग्री के अभाव होने पर ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो आत्मा की सर्वज्ञता को क्षति पहुंचा सके। पहले तो ठीक है, निमित्त रूप से प्रतिबंधक सामग्री यानी ज्ञानावरण कर्म का वहां उदय था, अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही, न ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतर है। अतः जिन शासन में आत्मा की सर्वज्ञता को काल्पनिक नहीं किंतु वास्तविक रूप में मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि सर्वज्ञता वो अतिशयोक्ति है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें चलती है, सर्वज्ञ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां चलती है। इस प्रकार केवल ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपणा हुई। यानी आवरण के द्वारा ज्ञान का ही वर्णन है यहाँ, क्योंकि जितना ज्ञान है उसके उतने आवरण भी है। दर्शनावरणादि कर्म प्ररूपणा। दर्शनावरण कर्म की नौ प्रकृतियां हैं, आपको मालूम है नौ प्रकृति? हाँ बोलो बोलो। क्या पूरा नाम बताओ ना।
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मनोपर्य दर्शन,
सोचने दो उनको। हाँ मैंने क्या पूछा?
दर्शन के
दर्शनावरण मैंने पूछा। मनोपर्य नाम का दर्शन होता है, आपने उसको भी बोल दिया। यदि मैं दर्शन पूछूं तो कितने होते हैं, दर्शन के भेद कितने हैं? कौन से? मंजू दाई आप बोलेंगे दर्शन के भेद? चार हुए। हाँ, और दर्शनावरण के भेद वो तो नौ। बोलो। हाँ ये चार हुए। हाँ बराबर है। तो देखो हमने क्या देखा, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शन, निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थानावरण। पांच प्रकार की निद्रा और ये जो चार, तो इनको तो ये सारे क्या है, दर्शनावरण कर्म। यहाँ लिखते हैं दर्शनावरण कर्म की नौ प्रकृतियां है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण, निद्रा 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 प्रचला 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 तथा स्थान वृद्धि। वेदनीय कर्म की साता तथा असाता ये दो प्रकृतियां हैं। पहला ज्ञानावरण का वर्णन किया, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा नंबर किसका है, वेदनीय। इसको कर्मकांड में भी तृतीय ऐसा बहुत बार उसका उल्लेख है, तीन नंबर पर इसको लेते हैं हमेशा, क्योंकि ज्ञान है दर्शन है और फिर ये सुख दुख में निमित्त है, इसलिए इसको लिया वहां पर। अब मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। यहाँ पढ़ने के पहले हम गिनेंगे, आप बताएंगे। हाँ, कौन बताना चाहते,
16, 9 और 3
यानी 16 कषाय कर्म, अभी कर्म कहेंगे, 9 कषाय कर्म और 3 दर्शन मुनि की 3 प्रकृति। कौन सी 3? तो यहाँ देखो हम पढ़ेंगे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग। यहाँ कर्म के भी और जीवों के भाव भी, उनके नाम वे ही है, कर्म के आगे कर्म शब्द लगाएंगे। तो अनंतानुबंधी पढ़े हमने, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, संज्वलन क्रोध मान माया लोग, सम्यक तो प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व, ये बीच में लिए। फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद, ये मोहनी की हो गए। कौन कौन से देखे अभी तक नितिन भाई, पूरे कौन कौन से मूल प्रकृतियों के नाम ले लो, ज्ञानावरण, वेदनीय तक ही देखी, अभी क्या देखी, मोहनी, तो चार हुई। अभी आगे नरक मनुष्य तीर्यंच देवायु, ये आयु कर्म की चार प्रकृतियां है, यानी नरकायु तीर्यंच आयु मनुष्यायु देवायु। नाम कर्म की 42 बंध प्रकृतियां है, यह अलग प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। देखो गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श आनुपूर्वी अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास आताप उद्योत विहायोगति त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त प्रत्येक साधारण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यशस कीर्ति अयशस कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर। ये जो 42 है ना, तो ये 93 आती है इसमें सभी मिलकर, तो उसके ग्रुप्स बनाएंगे 42, पिंड अपिंड मिलकर 42। तो इसमें से पिंड प्रकृतियां कितनी है, 14 है। कौन सी, गति, गति में 4 गति आ गई, जाति शरीर बंधन संघात संस्थान सहनन अंगोपा, फिर विहाय गति है अनुपूर्वी है, वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण भी उसमें आते हैं, क्योंकि उसके अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ हमको 93 अगर गिननी, हाँ इसमें से जो एक गति बंधेगी एक साथ,
हाँ
बरोबर आहे. वो प्रतिपक्षी आपत्ति यह नाम कर्म में उन्होंने केवल ले लिए, मात्र नाम कर्म में लगाना है. प्रकृतियां अलग अनेक है परंतु बंधेगी एक, ऐसा ही उनको कहना है. एक वर्ण नाम कर्म बंधेगा. तो हमें याद रखने के लिए भी आसान होता है, जैसे जोड़ी जोड़ी है, त्रसादि की चार है, फिर वो स्थिरादि की वो छह है, तो ये इस तरह से हम याद रखेंगे. परंतु आप अगर कहते हैं, आप यदि कहते कि एक ही बनती है, तो इसमें दोनों को गिना है, त्रस और सावर दोनों को गिना है, सूक्ष्म और मादा दोनों को गिना है. हाँ, वर्ण गंध के बारे में. वही तो, ये जो 42 जो बंद प्रकृतियां नाम दिया है उन्होंने, इसको कहते पिंड और अपिंड मिलकर. पिंड ने ग्रुप्स भी कोई एक बंदेगी. अब उसको हमने प्रतिपक्षी और प्रतिपक्षी इसमें भी डिवाइड किया था, उसमें से कोई बंदेगी उसको लिया था. इस नाम कर्म में जो गति नाम का कर्म है उसके चार भेद है, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति. ये सारा विषय अपना बहुत बार हुआ है यहाँ पर, इसलिए आप तो आसान लगता है. इस प्रकार जिस प्रकृति के जितने भेद है उतने भेद समझ लेना चाहिए. ऊपर तो 42 बताए, और जहाँ जिसके भेद है, जाति के कितने हो गए, 5, शरीर के कौन से, शरीर नाम कर्म कौन कौन से है बोलो, औदारिक है, वैक्रियक है, आहारक है, तेजस है, कारमान है, 5 अलग अलग शरीर है. उसी के हम ऊपर ही देखते हैं, उसी के नाम वाले बंधन भी है, उसी के नाम वाले संघात भी है. संस्थान कितने हैं, 6 है, मालूम है, बोलो. बहुत अच्छा, कुब्जक. अंगोपांग के कितने भेद है, शरीर के 5 है, अंगोपांग के मंजू बहन अंगोपांग कितने हैं, कितने हैं पूछा मैंने, कौन से नहीं पूछा, 3 है. तेजस और कारमान के कोई अंगोपांग नहीं होते. हम सहनन, हाँ बोलो, सहनन में कहाँ घुस गए, असंप्राप्ति का नहीं, ऊपर से शुरू करो. वज्र नाराचरण, ये 6 सहन है. फिर वर्ण गंध रस उसकी जो पर्याय है उसको लेना वहां पर. अनुपूर्वी जैसे गति के भेद है वैसे अनुपूर्वी के आगे तो सिंगल है सब.
विनय गति में प्रशस्त
है, आगे भी जोड़ी जोड़ी तो बताई है उन्होंने, उसमें तो कोई भेद नहीं है. तो यहाँ कहते हैं इस नाम कर्म में जो गति नाम कर्म है उसके 4 भेद है. इस प्रकार जिस प्रकृति के जितने भेद है उतने भेद समझ लेना चाहिए, अर्थात षटखंडागम वर्गणा खंडांतर्गत प्रकृति अनुयोग द्वार में जिस प्रकार कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का निरूपण किया गया है तदनुसार यहाँ भी जानना चाहिए. विशेषत गति के सिवाय नाम कर्म की ये प्रकृतियां भी भेद युक्त है. ये मूल उन्होंने उसी में लिखा है. बादाली सम ऊपर देखो, बंद पगदियो यम तम गति नामम कमम तम चतुर्विधम वगैरह वगैरह, यानी यथा पगदि भंगो तथा कादवो, यानी मूल उन्होंने महाबंध में ऐसा लिखा है कि वहां जो लिखा है वे समझना, क्योंकि पहले 5 खंड लिखे गए थे और बाद में ये 6ठा खंड लिखा है, इसलिए वहां मूल में ही वो लिख दिया उन्होंने. ये मूल ग्रंथ है, ये कोई टीका नहीं है। देखो विशेषार्थ पढ़ेंगे। गति के सिवाय नाम कर्म की ये प्रकृतियां भी भेद युक्त है। गति की तो बात ऊपर बताई, और कौन कौन से भेद युक्त है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेन्द्रिय, जाति। ये जाति नाम कर्म पांच प्रकार का, औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस, कारमण, शरीर नाम कर्म है। औदारिकादि रूप पांच बंधन तथा पांच संगत, समचतुरस्र, अग्रोध, परिमंडल, कुब्ज, यहाँ कुब्ज लिखा है, स्वाति, वामन, हुंडक संस्थान, ये छह संस्थान। औदारिक शरीर अंगोपांग, वैकृत शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, ये अंगोपांग तीन है। वज्रषभ नाराज, वज्रनाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन, ये छह सहनन के नाम। अब वर्ण नाम कर्म में शुक्ल, कृष्ण, नील, पीत, लाल वर्ण, कहते ना काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। सुगंध, दुर्गंध, ये दो हो गए गंध के। खट्टा, मीठा, चिरपरा, चिरपीरा लिखा है, चरपरा लिखते हैं हमेशा। कटु, कशाला, रस, स्पर्श के ठंडा, गरम, स्निग्ध, रुक्ष, हल्का, भारी, नरम, कठोर। प्राग्ञानुपूर्वी में भी नरक गत्यानुपूर्वी, तीर गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी को ही गति, प्रायोग्यानुपूर्वी ऐसा पूरा भी नाम कहेंगे, या डायरेक्ट नारकानुपूर्वी भी कहेंगे। अलग अलग जगह एक ही पुस्तक में अलग अलग नाम आते हैं। शॉर्ट में नारकानुपूर्वी लिखेंगे, नरक गति गत्यानुपूर्वी लिखेंगे, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी भी लिखेंगे। प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, ये 65 उत्तर प्रकृतियां हैं, जो पिंड रूप से 14 कही गई। अभी हमने देखा ना 14 पिंड प्रकृतियां, पिंड ने ग्रुप वाली। 65 उत्तर भेद वाली पिंड प्रकृतियों में 28 भेद रहित अपिंड प्रकृतियों को जोड़ने पर नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है। ये 14 तो पिंड वाली हुई, टोटल है 42। तो अपिंड कितनी है? 28। तो अपिंड में वो अगुर लघु आदि 4 है, अतप उद्योत वाली 2 है, और बाकी तो जोड़िया कितनी है? त्रस आदि की 4 जोड़ी और वो स्थिर आदि वो 6 जोड़ी। 10 तो जोड़ी, 10 दोनी 20 हुई, ये 26 हो गई। निर्माण और तीर्थंकर ये 28 हो गई टोटल। हाँ, स्पर्श नहीं, उसमें तो 4 युगल है ना, उसमें से एक एक युग, यानी 4 तो मिनिमम बंदे। उच्च गोत्र, नीच गोत्र के भेद से गोत्र कर्म 2 प्रकार का, क्योंकि हम अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र, कौन सा रह गया? अंत वो बता रहे, दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्यांतराय, ये अंतराय की 5 प्रकृतियां हैं, यानी हरेक के आगे अंतराय लगाना, दानांतराय, भोगांतराय वगैरह, सब प्रकृतियां 148 होती है। इन कर्म प्रकृतियों के विशेष भेद किए जाए तो अनंत भेद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो 148 है, फिर असंख्यात लोक प्रमाण है, और एक एक ज्ञान की अपेक्षा एक एक कर्म को अलग अलग नाम दे दो तो उसकी अपेक्षा से अनंत कहेंगे। इस प्रकार प्रकृति समुत्कीर्तन समाप्त हुआ। अब सर्वबंध, नो सर्वबंध प्ररूपणा, ये शब्द तो हमने धवला में बहुत बार पढ़े, सर्व, नो सर्व, उत्कृष्ट, जघन्य वगैरह, वो सब बताएंगे। जो सर्वबंध तथा नो सर्वबंध है उसका ओघ अर्थात सामान्य और आदेश अर्थात विशेष से 2 प्रकार निर्देश होता है। ओघ से 5 ज्ञानावरण तथा 5 अंतराय की प्रकृतियों का क्या सर्वबंध है या नो सर्वबंध है, तो इनका सर्व बंद होता है। यानी यहाँ सभी की सभी बनती है, सभी एक बंदगी नहीं, वो बंदगी ही बंदगी ने अभी तो अनादि से बन रही है, और जब तक इनकी बंदगी चित्ती नहीं होती तब तक बनती रहेगी, और पांचों में से कितनी बनती उसकी बात चल रही, तो सभी बंदेगी। नाम कर्म की भी सभी बंदेगी कि नहीं बंदेगी? हाँ? नहीं बंदेगी। अच्छा, विशेषा तो नाम कर्म की कितनी बंदेगी मैक्सिमम? अभी शाम का विषय चल रहा है आपका, आपको नहीं पूछा।
नौ ध्रुव बंदी और नौ और अध्रुव बंदी, 18 तो है ही, और 3 आए किसने बंदी
उन्होंने बताया, इसलिए वो 20 और 21 आप उदय की बात कर रहे हैं। मिनिमम बंद कितना देखा था? हाँ बोलो। हाँ, जो अभी हम श्रेणी की बात नहीं करेंगे, श्रेणी में एक का बंद होता है उसकी बात छोड़ो, अभी रेगुलरली एक इंद्रिय अपर्याप्त का 23 का तो बंद होता है, फिर हम सोचते हैं कि और 25 का किसको है, 26 का किसको है, 28 का किसको है, वो सोचते ना। मैक्सिमम कितना देखा था हमने? 31 तक देखा, और फिर 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में आते तो एक का हो जाता है। यानी मैक्सिमम एट ए टाइम कितनी बंदेगी? तो 31 बन सकती है, और हमने देखी 93। देखो यहाँ क्या कहते हैं, विशेषार्थ ज्ञानावरण अथवा अंतराय के 5 भेदों में से अन्यतम का बंद होने पर शेष 4 भेदों का नियम से बंद होता है। सभी बनती है एट अ टाइम, ऐसा नहीं कि एक बंद रही है इसलिए दूसरी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व भेदों का बंद होने के कारण इनका सर्व बंद कहा गया है। प्रश्न, दर्शनावरण कर्म का सर्व बंद है या नो सर्व बंद है? उत्तर, संपूर्ण प्रकृतियों के बंद करने वाले के सर्व बंद होता है, और सर्व प्रकृतियों में से न्यून प्रकृतियों के बंद करने वाले के नो सर्व बंद होता है। अभी आप बोलो कौन सा जीव सर्व बंद करेगा? मिथ्या दृष्टि जी, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कह दिया इसलिए। प्रेरणा बेन, सभी नव प्रकृतियों को कौन बांधेगा? दर्शनावरण के सभी नव प्रकृतियों को कौन बांधता है, ये मैंने पूछा। मिथ्याति और सासादन, सासादन में जाके बंद विच्छित्ति होती 3 की, सासादन वाले को भी लेना, ध्यान बुद्धि निद्रा निद्रा और पछला पछला दूसरे में भी बनती है, बाद में 6 बंदेगी उनके, 3रे गुणस्थान से लेकर 6 प्रकृतियों का बंद चालू होगा। 4 का जब निद्रा प्रतला की बंद विच्छित्ति हो जाएगी 8वें के पहले भाग में, तब जाके 4 बंदेगी। कहाँ तक बंदेगी? 4 10वें तक। तो यहाँ क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रकृतियों के बंद करने वाले के सर्व बंद होता है, और सर्व प्रकृतियों में से न्यून प्रकृतियों के बंद करने वाले के नो सर्व बंद होता है। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।